सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं किस विषय पर बात करने जा रहा हूं, इसकी घोषणा अभी नहीं कर पा रहा हूं। एक दो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, मैं चाहता हूं कि पहले जो घटी हुई हैं उन्हें आप से डिस्कस कर लूं। इसके बाद यदि समय बचेगा तो डेफिनेटली अभी जो प्री एग्जाम हुए हैं उन्हीं को मुख्य विषय के तहत हम लोग कुछ समय तक चलाते रहेंगे। तो जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना कुछ दिनों पहले ही आपके सामने घटित हुई है, जो अब खबर में तब्दील हो गई है दोस्तों, वो है हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन होना। इसकी शुरुआत हो गई है, राइट? क्या थी, कितना बड़ा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, भी आपके काम की नहीं है। हाँ, चूंकि ये सब खबरें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती हैं तो उस रूप में आप देख लें, पढ़ लें, उसकी मनाही नहीं है, और देखना और पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब परीक्षा की दृष्टि से इसमें हम कुछ चीजें अपने लिए छांटना चाहेंगे तो डेफिनेटली कुछ विशेष तथ्यों पर हमें ध्यान देना होगा, जोर देना होगा। और हमारी जो तथ्य होने चाहिए ये प्रायोरिटी के आधार पर होने चाहिए, प्राथमिकताओं के आधार पर होने चाहिए। तो इस पूरे के पूरे अगर हम इवेंट को लेकर के चलें तो हमारी प्राथमिकता किस बात की होनी चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में है और बहुत विस्तार के साथ है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने वाले कौन होते हैं? विधायिका है, कानून बनाती है उसके अभ्यास पर, और इसके बाद कार्यपालिका है, बनाए हुए कानून को लागू करती है, और इसके बाद न्यायपालिका है, ठीक है, और जो इनको कार्यरूप देने का काम जो पूरा का पूरा करती है, अगर हम न्यायपालिका को छोड़ दें तो वो है पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, एक दुर्भाग्यजनक स्थिति, दुर्भाग्यजनक ही मैं कहूंगा, रीजन कोई भी रहा हो, किसी की कितनी गलती रही हो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्यजनक एक स्थिति तो थी ही कि संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। संसद राष्ट्र की पंचायत है, महापंचायत है, और जिन्हें वहां जाकर के बैठना है, जन कल्याण के लिए निर्णय लेने हैं, जिन राजनीतिक दलों को, कुछ राजनीतिक दल उसका विरोध कर रहे थे। देखिए, मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, उनका विरोध कितना सही था, कितना गलत था, मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूं। जो सत्ताधारी दल थे या जो वहां पहुंचे, वो किस आधार पर वहां पहुंचे, सत्ताधारी पार्टी ने विरोध करने वालों को संतुष्ट करने की कोशिश की, नहीं की, ये सब एक अलग मुद्दा है। लेकिन बहुत अच्छा होता ना कि संसद भवन का जो उद्घाटन समारोह था उसमें हमारे देश की सारी राजनीतिक पार्टियां मौजूद रहती। इसका मतलब है कि पूरा देश वहां मौजूद है, क्योंकि देखिए, जिन राजनीतिक दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद भवन में हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उन्हें भी चुनने का काम तो हमारे लोगों ने ही किया है, हम ही लोगों ने चुना है। यह बात अलग है कि हमने उस पार्टी के लोग को चुना है जिन्होंने इसका बायकॉट किया, लेकिन है वो हमारे अपने ही लीडर, वो संसद के हिस्से हैं। लेकिन चलिए, ऐसा नहीं हुआ। तो अब जो ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ और क्या होना चाहिए था, ये सबसे प्राथमिक बिंदु है इस घटना का। अब इसके आधार पर आपको अपना मत बनाना है कि सही किया गया या गलत किया गया, इसको कैसे सही किया जा सकता था, यह निर्णय आपको लेना होगा। मैं समझ सकता हूं कि अभी आप जिस उम्र में हैं, अभी तो आप पढ़ने के दौर में गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में एकदम से निर्णय ले पाना आसान नहीं है आपके लिए। तो अब आपके पास उपाय क्या है? आपके पास उपाय है, और वही है न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स कमेंट। इनके आधार पर आप अपना मत बनाते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक कह रहा है, ये ठीक नहीं कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता रहता है ना। लेकिन याद रखिए कि ऐसा तभी हो पाएगा जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होगी। रटने से बात नहीं बनेगी, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह विषय आपका अच्छे तरीके से तैयार नहीं है तो फिलहाल परेशान मत होइए कि अरे मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूं, आगे कर लेंगे, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, ताकि ये सब बातें आगे चल करके आपके काम आ सकें, बस दैट्स ऑल। मैं अब आपको सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी नहीं करवा रहा हूं, तैयारी कर सकें ऐसा बना रहा हूं, और ये बहुत जरूरी है, खासकर नए माहौल को देखते हुए। यूपीएससी अब जिस तरीके से क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करा रही है, इसका मतलब है कि वो इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर रही है, बस सीधी सी बात है। और आपको यूपीएससी की जो भावना है या जो जरूरत है उसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। जब भी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, सरकार, संविधान के बारे में विचार करें, अपना मत स्थिर करने की कोशिश करें, तो एक चैलेंज आपके सामने होगा और इस चैलेंज का मुकाबला आपको करना ही चाहिए। और वो चैलेंज यह होगा कि आपके अपने राजनीतिक मत होंगे, आप किसी पार्टी को फेवर कर रहे होंगे, मतदाता के रूप में आप जब वोट डालने जाएंगे तो किसी न किसी पार्टी के सिंबल पर ही तो मुहर लगाएंगे, तो वो आपके पसंदीदा राजनीतिक पार्टी हुई। लेकिन जब आप इस रूप में विचार करेंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए था, तब आपको अपनी इस पसंद को किनारे करना पड़ेगा, करना ही चाहिए, और सीधे आपके सामने जो मिरर होगा या जो कसौटी होगी वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। दैट्स ऑल, गांठ बांध लीजिए। चाहे आप मेंस के आंसर लिख रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू में जवाब दे रहे हो मेंबर्स ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आपकी जो कसौटी है वो एकमात्र एकमात्र और एकमात्र कसौटी होनी चाहिए संविधान, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि अब ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने विरोध किया, इनको संविधान की कसौटी पर कस करके देखिए कि वो कितने सही थे, कितने गलत थे। ठीक है, जो सत्ताधारी पार्टी थी या जो पार्टियां वहां संसद भवन के उद्घाटन समारोह में गईं, उनके अपने मत थे, डेफिनेटली अपने मत होने ही चाहिए, यही तो लोकतंत्र है कि दोनों के भिन्न भिन्न मत हैं लेकिन कहीं न कहीं वो एक भी हैं। जब राष्ट्रीय कल्याण की बात आती है, राष्ट्रीय हित की बात आती है, तो वे एक भी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हित कैसे सधता है उसके बारे में एक पार्टी की अप्रोच कुछ है तो दूसरे पार्टी की अप्रोच कुछ है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सिचुएशंस क्या है, और सच पूछे तो इसे हमारे राजनीतिक दलों ने जो विरोध कर रहे थे आधार भी बनाया था, और इसी के आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, और ये अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका रिजेक्ट कर दी। मैं कह रहा हूं कि अच्छा ही हुआ, और ये होना ही था। ऐसा नहीं है कि वो एडवोकेट हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं इतने मैच्योर होते हैं, उनको ये नहीं मालूम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये स्वीकार नहीं होगा, उनको मालूम होगा। लेकिन ठीक है, लोग चांस लेते हैं या इसी बहाने चीजें पब्लिक तक पहुंचती हैं, पब्लिक तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम भी तो यही होता है ना कि भाई ठीक है हम याचिका दायर कर रहे हैं, अखबारों में छपेगा, लोगों तक बातें पहुंचेगी, इसके बाद फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर लोगों तक बातें पहुंचेगी, तो उनका अपना काम तो पूरा हो गया ना, जो पब्लिक को एक तरह से शिक्षित करने की जो बात होती है या उनको अपना ओपिनियन लोगों तक पहुंचाना है, तो वो भी इस तरह के माध्यम काम में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि भाई ये तो जो सरकार है ये उसके निर्णय लेने का काम है, हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं, इसमें कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो हो नहीं रहा है कि जनहित याचिका दायर हम स्वीकार करें। ठीक है, तो अब आप देखिए कि संविधान में क्या कहा गया है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इसे आपको अगले प्री एग्जामिनेशन के लिए नोट भी कर लेना चाहिए कि इसके बारे में संविधान का ख्याल क्या है। सीधे सीधे नहीं, लेकिन आप जब अपना पक्ष रखेंगे तो तथ्य तो संविधान से निकालेंगे ही। संविधान का एक अनुच्छेद है और ये अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और वह अनुच्छेद है 79, अनुच्छेद 79। देखिए, एग्जामिनेशन में कभी कभी अनुच्छेद पर प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर प्री एग्जामिनेशन में। अनुच्छेद तो संविधान में बहुत हैं, तो क्या आप सारे अनुच्छेदों को याद करेंगे? बिल्कुल नहीं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। किसी कारण से जब कोई अनुच्छेद बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है तो बस उसे आप नोट कर लीजिए और उस पर ध्यान दीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 बेसिकली संसद को परिभाषित करता है, आप यूं कह लीजिए कि संसद क्या है। एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसमें जो लिखा गया है वो ये है कि जो संसद है उसमें राष्ट्रपति होंगे और फिर हमारे संसद के जो दोनों सदन हैं जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है वे होंगे, यानी कि इन तीन से संसद बनेगी। तो देखिए, जहां तक लोकसभा और राज्यसभा का सवाल है तो वहां तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, तो वो भी संसद के हिस्से हैं, लेकिन वो लोकसभा और राज्यसभा एक सदन के रूप में है, मतलब समूह के रूप में है, वो ग्रुप है, पर्सन नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रपति है वो पर्सन है, अब अकेले हैं, वहां प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, वहां राज्यसभा के सभापति का नाम भी नहीं है, नथिंग, वहां लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जो आप यूं कह लीजिए सरकार के जो हेड हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वो लोकसभा के हिस्से हैं, और लोकसभा के हिस्से होने के नाते ठीक है कि वो संसद के हिस्से हैं, लेकिन इंडिविजुअली सिर्फ राष्ट्रपति हैं, पहली बात। दूसरी बात कि राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। तीसरी बात, जो राष्ट्रपति होते हैं वो एबव द पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। अपेक्षा की जाती है कि भले ही वो शुरू में किसी पार्टी से जुड़े हुए हों, लेकिन अब जबकि वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो सीधी सी बात है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होंगे, यानी कि वो राष्ट्र से जुड़े हुए होंगे। राष्ट्र से सभी जुड़े होते हैं, मेरे कहने का अर्थ आप ये मत लगा लीजिएगा, लेकिन वो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में आप मेरे अगर इन तीनों पॉइंट्स को लें तो आपको लगेगा कि नहीं, राष्ट्रपति सबसे उपयुक्त सदस्य हो सकते थे। एक चौथा पॉइंट भी है और वो ये कि जब भी संसद के नए सत्र की शुरुआत होती है तो आपको मालूम है कि जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं और मेरी सरकार कहते हैं। ऐसा कोई दूसरा अवसर देखिए शायद ही होता हो कि जब राष्ट्रपति इस तरह से संबोधित करते हो, यानी कि संसद की जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति के संबोधन से होती है। तो वहां भी राष्ट्रपति थोड़े से ऊपर बैठते हैं, उनकी अपनी एक गरिमा है। तो इसके आधार पर जो जिन्होंने बायकॉट किया वो कह रहे थे कि नहीं, जो संसद का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपके दिमाग में क्रिस्टली क्लियर होना चाहिए कि उनकी मांग क्या थी, पक्ष में क्या बातें हो सकती हैं। लेकिन जो सरकार थी या जो दूसरी पार्टियां थी, उन्होंने अपने कुछ बहुत ज्यादा बातें नहीं की। उन्होंने कुछ विधानसभाओं के उन्होंने उदाहरण दिए जबकि मुख्यमंत्रियों ने उसके उद्घाटन किए हैं, गवर्नर्स ने नहीं किए हैं, इस तरह की कुछ बातें कही गई हैं। तो दोस्तों, ये जो पहला पॉइंट था वो मैंने आपके सामने रखा है और जानबूझ करके थोड़े विस्तार के साथ रखा है। तो इस विषय के बारे में बस अब इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल की संख्या आज भी बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसीलिए मैं अलग से ईमेल लिखने वालों के नाम यहां नहीं ले पा रहा हूं। सबको धन्यवाद देता हूं और सबके प्रति अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त भी करता हूं। नमस्कार।